لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزال المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. عزیزان محترم، آج شب شہادت و بعض جگہوں پر جو ہے وہ روز شہادت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ماہ رجب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ مہینہ کے جسے پروردگار نے اپنے آپ سے منسوب کیا، وہ مہینہ کے جو گناہ اور استغفار کا مہینہ ہے، وہ مہینہ کے جو ہمیں اندر سے پاک کرتا ہے تاکہ ہم اس ماہ رجب سے فائدہ اٹھا کر ماہ شعبان میں وارد ہوں، اور اس کے بعد پھر ماہ رمضان کے جو ہمیں اس اصل ہدف کی طرف لے کر جاتا ہے کہ جہاں ہم شب قدر کو درک کر سکیں. نہیں پتہ ہم نے اس مہینے سے کتنا فائدہ اٹھایا، کتنا فائدہ اٹھا پائے، لیکن ابھی چند دن باقی ہیں. کوشش کریں کہ ان چند دنوں میں جتنا ہو سکتا ہے، ایک تو روزے رکھیں تاکہ روزے جو ہیں وہ ماہ رمضان، ماہ رجب کے ماہ شعبان سے متصل ہو سکیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس مہینے کی روزے رکھنے کی فضیلت سے جو ہے وہ محروم نہ رہ جائیں. بہت سارے فضائل جو ہیں وہ ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں ہیں کہ یقیناً آپ نے واقف بھی ہوں گے اور آپ سن بھی چکے ہوں گے اور سنتے رہیں گے. استغفار کا مہینہ ہے، جتنا مہینہ رہ گیا ہے کوشش کریں مختلف استغفار مفاتح الجنا میں ماہ رجب کے اعمال میں موجود ہیں، یہ چند دنوں میں اس کو جو ہے وہ غنیمت سمجھیں اور اس پر عمل کریں. ماہ رجب کے اندر جہاں مختلف ایام ہیں وہاں پر جو ہے وہ ایک دن یہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام باب الحوائج ہیں، اور باب الحوائج یعنی دروازہ حاجتوں کا. اسے صرف ہم اہل تشیع نہیں بلکہ اہل سنت کے بھی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ کیونکہ کاظمین میں مولا کا حرم ہے اور بغداد کے قریب ہے، اور وہاں پر اہل سنت برادران کی آبادی بہت زیادہ تھی، حتیٰ بڑے بڑے علماء جو تھے وہ خود جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج کے نام سے پکارتے تھے. اس لیے وہاں پر ایک دروازہ، ایک باب ہے جو باب المراد کہتا ہے، کہ جو بھی شخص اس دروازے سے آتا تھا وہ اپنی مراد کو پورا کر حاصل ہو جاتی تھی اس کی مراد. اور آج بھی ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہماری مرادیں جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں. یقیناً ان ایام میں کہ جو سخت ایام گزر رہے ہیں اور ایک مشکلات ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس ایک بیماری اور ایک وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک پینک ہے، اور بیماری بھی ایسی ہے کہ جو بہت تیزی سے پھیلتی ہے، وہ کہ بہرحال ڈاکٹرز اور سائنس اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل آپ سنتے بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، میں بہت زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کروں گا. لیکن یہ ہے کہ ایک پناہ جو ہے دنیا کی ہر مصیبت اور بیماری میں، وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا در ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا در بھی انہی دروں میں سے ایک ہے. اس طرح حرم تو یقیناً نہیں کھلے ہوئے کہ جس طرح حرم کھلے ہونے چاہیے، اکثر جگہوں پر حرم جو ہیں وہ بند ہیں، لیکن یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ میں امام اور امامت کو کچھ آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں، تاکہ ہم در و دیوار کے محتاج نہ رہیں اپنے امام سے متصل ہونے کے لیے. خود امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امامت کی نشانیوں میں سے، کہ ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے پہلے والے امام جو ہیں یا پہلے والے جو بھی اللہ کا ولی ہے وہ اس کی نشاندہی کرے، ان کے بارے میں بتائے، کہ جیسے خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا. اور پھر جو ہے ایک یہ نشانی اور ایک یہ کہ وہ خود بھی جو ہے وہ آگے آنے والے کے بارے میں علم رکھتا ہو. دوسرا یہ کہ امام جو ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے, اس سے جو بھی پوچھا جائے وہ اس کو جانتا ہو, یہ اس کی امامت کی نشانیوں میں سے ہے, اور علم غیب رکھتا ہو, اور اس طرح کی چیزیں امام نے جو ہے وہ ایک صحابی کو بیان کیا. یہاں پر یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ امام نے یہ بھی فرمایا کہ امام ہر زبان کے اندر جو ہے وہ گفتگو کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں, ورنہ وہ امام نہیں. مشہور واقعہ ہے شہر ابی بصیر سے, واقعہ ہے کہ کوئی شخص خراسان سے آیا اور اس نے عربی لہجے میں امام سے سوال کیے, مگر امام نے اس کو فارسی ہی کے اندر جواب دیا. تو اس نے بولا مولا آپ کو فارسی آتی ہے؟ تو کہا پھر وہ امام ہی کیا کہ جسے زبان نہ آتی ہو. تو اور بھی آئمہ سے جو ہماری خدمت میں روایات ہیں, آئمہ کے علم کے بارے میں ان کی جو معرفت تھی اس کے بارے میں, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ ہر زمانے کے اندر کہیں پہ بھی ہو اپنے ماننے والوں کی بات سن سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آج بہرحال مشکل کا عالم ہے, بہت سارے حرم صرف ایک مشکل کی وجہ سے کہ وہ میں صحیح ہوں, میں سالم ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور مریض ہو, یا ہو سکتا ہے کہ میں مریض ہوں باقی لوگ سالم ہوں, لیکن میں ایک ایسی جگہ پر جاؤں جہاں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے بہت کم فاصلے سے ہیں اور جہاں پر بیماری پھیل بھی جو ہے بہت تیزی سے رہی ہے, تو وہاں پر میرا فرض کیا بنتا ہے؟ میرا فرض یہی بنتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس جگہ سے دور رکھوں. میں اگر چاہتا ہوں دوسروں سے محبت کرنا, تو میں ان کو اپنے آپ سے, اگر خدا نخواستہ مجھے کوئی مشکل ہے, یا ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو پرابلم ہو, کسی اور کو ہو سکتا ہے میں, میری باڈی جو ہے وہ اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو, شاید میں وائرس کو سروائیو کر جاؤں, لیکن شاید کوئی بوڑھا شخص ہو, کوئی خاتون ہو, کوئی بچہ ہو, وہ سروائیو نہ کر سکے. تو ہمیں سوسائٹی کو سب کو دیکھنا ہے, لیکن اس کا یہ وطن مطلب نہیں کہ ہمارا در توسل بند ہو جائے, ہم اہل بیت سے متصل ہونا ختم ہو جائیں, نہیں. مطلب جو لوگ حرم کے قریب نہیں رہتے, جو لوگ دنیا دور دراز کی جگہوں پہ رہتے ہیں, یا پرانے زمانے کے اندر جہاں پر یہ فیسلٹیز نہیں تھیں, لوگ جہازوں کے ذریعے سے نہیں آ سکتے تھے, لوگ تیز رفتار سواریوں سے نہیں پہنچتے تھے, جن کو کئی کئی مہینے لگتے تھے اپنے مولا کی خدمت میں, ظاہری, تو کیا وہ سب لوگ امام سے متصل نہیں ہوتے تھے؟ بہت سارے لوگ امام سے متصل ہوتے تھے اور امام ان کی آواز بھی سنتے تھے. خود جو ہے وہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کہیں پہ بھی ہو, تم صرف اپنے لبوں کو ہلاؤ, ہم تمہاری آواز کو سن لیں گے. تو یہاں سے یہ واضح ہے کہ ہم کہیں پہ بھی ہوں, ہم اپنے امام سے متصل ہو سکتے ہیں. ہم یہیں پہ آج آپ اپنے اپنے گھروں میں, پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہیں سے کاظمین میں مولا کے اس حرم سے متصل ہو سکتے ہیں, مولا کو واسطہ دے سکتے ہیں, باب الحوائج ہیں, کہ ہماری ان حاجتوں کو جو ہے وہ پورا کریں. اور سب سے بڑی حاجت یہ مشکل اور یہ مصیبت ہے کہ جو اس دم پورے عالم پہ چھائی ہوئی ہے. باب الحوائج ہیں, کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے, ان کو واسطہ دیں, ان کے بیٹے امام رضا علیہ السلام کا ان کو واسطہ دیں, ان کی بیٹی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا. یقیناً امام نے سختی کے اندر جو حالات گزارے ہیں, وہاں پر امام نے شیعوں کی خاطر جو ہے وہ گزارے ہیں. ایک روایت کے مطابق امام جو زندان میں رہے, اس کا وجہ خداوند متعال نے اسے کہا کہ کچھ شیعوں نے آشکار کر دیا, جو تقیے کا اس وقت کا عالم تھا کہ تقیے میں رہنا تھا, شیعوں نے کچھ آشکار کر دیا کہ جس کی وجہ سے مشکلات جو ہے وہ ان کے اوپر آنے والی تھیں, لیکن ان مشکلات کو امام نے شیعوں کے بجائے اپنے اوپر لے لیا, اور مولا جو ہے وہ 14 سال تک جو ہے وہ روایات کے مطابق جو ہے وہ مختلف زندانوں میں رہے, ایک زندان سے دوسرے زندان کے اندر رہے, اور امام نے ان ساری مشکلات کو اپنے اوپر لیا, برداشت کیا, تاکہ شیعہ علی حیدر کرار جو ہیں وہ سلامت رہیں. لیکن وہیں پر امام کی ایک حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں تو میں بہت کم مخلص شیعہ پاتا ہوں. یہ کئی عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں, ہم شیعہ ہیں, مگر جب میں ان کی طرف پلٹتا ہوں تو میں ان میں سے بہت کم کو پاتا ہوں. یہ تکیے لگائے بیٹھے ہوئے کئی عرصے سے کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. عزیزان محترم, کیوں امام نے اس وقت کی درد بیان کیا؟ ایک امام 14 साल कैद जिंदान में हो, क्यों कैद जिंदान में था, मगर शिया कहाँ थे उस ज़माने में, मगर कहाँ थे मौला के मानने वाले। यकीनन हालात ऐसे थे या उनके अपने अंदर ताकत नहीं थी कि इमाम 14 साल जिंदान में कैद रहा है। आज 1400 साल अगर आप कह लें कि अगर शिया सही ना हो तो 14 साल और 1400 साल दोनों गुजर जाएंगे। आज भी तो 1100 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया इमाम गैबत के अंदर है। तो गोया इम्तिहान किसका है? इम्तिहान शियों का है, इम्तिहान मानने वालों का है कि अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो फिर इमाम, एक इमाम 14 साल जिंदान में रह सकता है तो ये दूसरा इमाम 1100 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वह गैबत के पर्दे में रह सकता है। तो यहाँ पर हम इमाम को समझें कि इमाम है क्या। जब तक हम इमाम को नहीं समझेंगे हम नहीं पहुंच सकते उस असल हदफ तक। करबला को बार बार रिपीट करने का मकसद क्या है? करबला के उन वाक़यात को बार बार मजालिस में, मिंबर से, किताबों से बयान करने का मकसद क्या है? ताकि हम पहचाने कि वो जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचाने हैं वो कौन लोग थे और उन्होंने किस तरह इमाम हुसैन को पहचाना है, और यही उनकी पहचान बाइस बनी कि उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया इमाम के ऊपर और इमाम के उस काम को ख़त्म नहीं होने दिया, बल्कि उसी ने करबला से वो नूर निकला जो आज तक सदियों के फासलों को तय करता हुआ हमारे तक पहुंचा है। तो यहाँ इमामत शनासी मुहिम है। इमाम किसको कहते हैं? और इस हालात में जो दुनिया के हालात चल रहे हैं यहाँ पर हम अगर इमाम को नहीं पहचानेंगे तो हम मायूसी के अंदर हैं। अगर हम इमाम को नहीं पहचानेंगे तो हम असल हदफ की तरफ बढ़ नहीं सकते। ये मुसीबतें, ये इब्तलात, ये बलाएँ जो दुनिया में आते हैं, खूब इसका फ़लसफ़ा है, खैर और शर का दुनिया में फ़लसफ़ा है। जहाँ खैर नहीं है वहाँ शर है। खैर मुतलकन परवरदिगार है और परवरदिगार ने हर चीज़ को खैर खल किया है, परवरदिगार ने शर को खल्क नहीं किया। जहाँ खैर कम हो जाए वहाँ शर खुद वजूद में आ जाता है। जिस तरह तारीकी जो है उसका कोई वजूद नहीं है, हाँ मगर जब रोशनी नहीं होती, नूर नहीं होता तो फिर जुल्मत और अंधेरा हो जाता है। तो वहाँ पर हम देखें कि हम अपने इमाम को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। वो वजूद खैर, वो हुज्जत खुदा क्या कायनात में नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन हम उसको क्यों नहीं पहचान पा रहे? और ये मुसीबतें जो इस टाइम आई हुई हैं, हमें इन मुसीबतों को किस तरह बर्दाश्त करना है, किस तरह इसको संभालना है, किस तरह इस्तकामत दिखानी है ताकि हम अपने वक्त के इमाम तक पहुँचें। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर में लोग इमाम को नहीं पहचाने थे सही तरह। वो हर दौर के अंदर ये हुआ है कि हर दौर के इमाम के अंदर हर कोई नहीं पहचान पाया इमाम को, मगर कुछ ने पहचाना और जिन्होंने पहचाना वही जो है वो कामयाब हुए उस दौर के अंदर भी, और वही कामयाब हैं आज के दौर के अंदर भी। गो के इमाम का दौर बहुत सख्तियों का दौर था और उन हुक्मरानों का, जालिम हुक्मरानों का, जो कि ये जानते थे कि ये इमाम जो है वो खुद अपनी जगह रखते हैं, खुद इनका अपना जो है वो एक मकाम है, खुद जो है वो उस वक्त खलीफा वक्त के पास जब इमाम हाजिर हुए तो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपनी जगह पर इमाम को बिठाया। फिर जब इमाम चले गए तो खलीफा वक्त के एक बेटे ने पूछा कि आप इतनी जब उनके इज्जत के कायल हैं, आप इतनी उनको जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आप ये मनसब उनको क्यों नहीं दे देते? तो वो कहते हैं कि यकीनन वो इसके उसके हकदार हैं, लेकिन जहाँ हुकूमत और मलकूतियत की बात आती है तो वहाँ पर अगर तुम भी मेरे सामने आए तो मैं तुम्हारी गर्दन को जो है वो उतार दूँगा। यानी क्या बात, मसला ये है कि यहाँ पर दुनिया परस्ती है, यहाँ पर नफ्स परस्ती है, यहाँ पर डेजिग्नेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ रियासत तलबी जो है वो मुहिम है। यही चीज़ आइमा अलैहिस्सलाम और अम्बिया के मुकाबले में आई है। यही चीज़ आज भी, मैं नहीं कहता कि आपके अंदर, हो सकता है मेरे अपने अंदर किसी तरह से छुपी भी हो, शिर्क खफी किसी भी तरीके से मेरे अंदर छुपा हुआ हो। दुनिया की मोहब्बत, इन मुश्किलात में जो आज मुश्किलात आलम के अंदर आई हैं, यह मेरे लिए टेस्टिंग है और ये मेरे लिए टेस्टिंग थी और मेरे लिए मुसलसल टेस्टिंग है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, यहाँ मुझे कुछ खो जाने का अफसोस है, यहाँ मेरे हाथ से कुछ निकल जाने का मुझे अफसोस है, या मेरे लिए आगे ज़िंदगी ब्लाइंड हो गई है, आगे अंधेरा है। क्या मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि आने वाले वक्त में सब कुछ अंधेरा है, یا میں کسی خوف و حراس کے عالم میں ہوں، اور میں کس طرح اس وقت دنیا کو دیکھ رہا ہوں، میرے لیے اس ٹائم دنیا کیا ہے، دنیا کس طرح بڑھ رہی ہے. تو جن کے ایمان مضبوط ہیں وہ ان مشکلات کو طے کر رہے ہیں، عقلانی طریقے سے، لاجیکل طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ مشکلات کا فیض ہے. انما مال اسری یسرا، پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے، اور یقیناً آسانی ہے، لیکن اگر ہم ان مشکلات سے گزریں گے تو. مگر یہ نہ ہو کہ مشکلات ہمیں گھیر کر ہمیں ختم کر دیں. مشکلات اور امتحانات کا فلسفہ ہے، دنیا کا اصل جو ہے، دنیا کے معنی ہی دونوں پر بستی کے ہیں. دنیا سے مشکلات الگ ہو ہی نہیں سکتی ہیں. کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی اس طرف ہے کہ جہاں ہمیں اس دنیا سے گزر کے جانا ہے. اور آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ دیکھو، توحید سے متصل رہو، آخرت کی طرف متصل رہو. تمہاری اصل خلقت کا جو اصل ہدف ہے وہ تمہاری بندگی ہے، تم نے خدا کی بندگی کرنی ہے، چاہے تم کسی بھی حصے میں رہو، کسی زمانے میں رہو، کہیں پہ بھی رہو. لیکن اگر ہم اس بندگی سے خارج ہوتے ہیں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس طرف کیا ہے جو ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دکھانا چاہتے ہیں؟ اس طرف کیا ہے جہاں ہمیں شہدائے کربلا دکھانا چاہتے ہیں؟ اس طرف کیا ہے جو ہمیں شہدا نے دکھایا ہے؟ میں آج سن رہا تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ حسن باقری شہید، جو 8 سال عراق کی جنگ میں شہید ہوئے، اور شہید جو ہے وہ احمد کاظمی کہ جو بعد میں شہید ہوئے، لیکن دونوں ساتھی تھے، اور دونوں اس طرح ایک ساتھ تھے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے. اور اس کی آج میں نے وہ خود آڈیو سنی جو حسن باقری نے اس وقت اس زمانے میں جو ہے وہ پیج کی تھی، جو اپنے بے سیم کے ذریعے سے، وائرلیس کے ذریعے سے احمد کاظمی کو، اور وہ جس جگہ پر تھا وہاں پر اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد وہ شہید ہو گیا. مگر اس نے کیا کہا حسن باقری نے، وہاں سے کہا کہ احمد کہاں ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں دوسری طرف ہوں، اور میں تمہارے لیے دعا گو ہوں، میں تمہارے پاس تھا مگر مجھے دوسرا شخص جو ہے وہ لے کر آ گیا. کہا کہ احمد جلدی کرو، ادھر آ جاؤ، اور ادھر سے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت حسین ہے، یہاں جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ بہت خوبصورت ہے. مگر 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ حسن باقری شہید ہو گیا. اور شہید احمد کاظمی بعد میں ساری زندگی اس پر تڑپتے رہے، لیکن بہرحال اللہ نے ان کو بھی شہادت کا درجہ بعد میں عطا کیا. مگر اس طرف کیا تھا؟ آیت اللہ عظمہ خامنائی بیان فرماتے ہیں کہ حسن باقری اس وقت اس طرف کیا دیکھ رہا ہے، حالانکہ توپ ہے، بارود ہے، دھماکے ہیں، آگ ہے، خاک ہے، مگر کیا چیز ہے جو اس کو نظر آ رہی ہے؟ عزیزان محترم، وہ اصل حقیقت ہے، وہ بہشت رضوان ہے، وہ رضائے الہی ہے، کہ جو واقعاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے ہمارے لیے راستہ کھولا ہے. وہی راستہ کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، مگر انہوں نے دیکھا ہے کہ اتنی تلواریں چلتی رہیں ان کے گردن پر، مگر ان میں سے کسی نے تکلیف کا اظہار نہیں کیا. شمع بجھ گئی شب عاشورہ، مگر کوئی وہاں سے جانے کی کوشش کسی نے نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ امام مہم ہے، امام اصل میں حیات ہے، امام ہی کائنات میں ایسی حجت ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات باقی ہے. پوری زمین اور آسمان میں ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے، سب اللہ معافی السماوات معافی الارض، ہر چیز زمین اور آسمان کے درمیان میں جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے. مگر ان کو تسبیح کون دے رہا ہے؟ ان کو تسبیح کون عطا کر رہا ہے؟ امام ہے. امام جب فرماتے ہیں سبحان اللہ، تو یہ تسبیح پوری کائنات کو دی جاتی ہے، اور پوری کائنات تسبیح کرتی ہے. یہ ہے امام. ہم امام کو نہیں سمجھ پائے. جو امام کو سمجھا وہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے گزر گیا ہے. ہم یہاں سمجھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس وقت ایک اچھی خاصی تعداد نہیں سمجھ پائی، ورنہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے، لیکن امام نے ان کو بچایا اور اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالا. آج وقت کا امام غیبت کے پردے میں ہم سے سوال کر رہا ہے کہ ان مشکل حالات میں تمہاری میری طرف کتنی توجہ ہے، میرے لیے کیا کرو؟ حالات سخت ہیں. خوب، یہ جو حالات دنیا میں ہیں شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، جو اس ٹائم سچویشن ہے دنیا کی، کہ میں خود ابھی کئی جگہ سے جو ہے وہ ٹریول کر کے آیا ہوں، کئی ملکوں سے ہو کر آیا ہوں، اور جو ہے وہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے سے اس میٹلسٹک ورلڈ کو دیکھا، कि जिसके ख्वाबों ख्यालों में लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है, और अगर है भी तो ईमान नहीं है, जिसने अपनी सिर्फ दुनिया को, ज़ाहरी दुनिया को खूबसूरत बनाया हुआ है। अब जब ये ज़ाहरी दुनिया जिसको खूबसूरत बनाया हुआ है ये टूटती हुई नज़र आ रही है, ये महल लटकते हुए खटकते हुए नज़र आ रहे हैं, ये हर चीज़ें जो सिस्टम बनाया इंसान ने वो उसको तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि खुद तबाह किया है उसने, खुद उसका अपना इसमें कसूर है। इसमें परवरदिगार की तरफ से मुश्किलात मुसीबतें, इंसान खुद उन मुश्किलात को ईजाद करता है। अगर इंसान बंदगी सही करे तो इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ता रहेगा। खूब ये जो सब उसने बनाया था, वेस्ट ने पूरी आइडियोलॉजी, ये पूरा सिस्टम बनाया, ये टूटता हुआ उसको नज़र आ रहा है, उसकी सांसें उखड़ती हुई नज़र आ रही हैं, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे रहेगा, वो क्या कर, यही देखा। इसी वजह से आपने देखा कि वो ज़ाहिरन इतनी महजब कौमों का हाल आपने देख लिया कि जहाँ पर लॉकडाउन की सिचुएशन आई वहाँ पर बाजारों में क्या हाल थे, एक दूसरे के साथ क्या हाल थे। वो ये इंसानियत है, इस्लाम इंसानियत का दर्द देता है। आइए यहाँ पर हम एक दूसरे पैगाम की तरफ जाएं कि जो इन अय्याम के अंदर हमें आइम्मा अलैहिस्सलाम ने तालीम दिया कि जितनी तुम पर मुश्किल आ जाए, जितनी तुम पर परेशानी आ जाए, तुम इंसानियत को अपने हाथ से मत जाने दो। जंगों के भी कवानीन बताए इस्लाम ने कि जंगों में ना तुमने लोगों के घरों को नुकसान देना है, ना उनके दरख्तों को, ना उनके खेतों को, ना उनकी खवातीन को, ना उनके बच्चों को नुकसान देना है। खूब ये अभी हम हालत जंग है मसलन, अभी एक ऐसी परेशानी है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर अगर कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है, कोई मरीज़ है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और यहाँ माशाल्लाह कितने मोमिनीन जो हैं वो देख रहे हैं कि खूब जो है वो जमहूरी इस्लामी के अंदर भी लोग जो है वो खुद एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हत्ता मैंने यूके और बाज़ जगहों में देखा जो हमारे जवान हैं माशाल्लाह वो बग़ैर तफरीक किए कि जो है वो मुसलमान है या गैर मुसलमान है, कोई भी है, जो मुश्किल के अंदर है, जो घरों के अंदर बूढ़े लोग रह रहे हैं, वो उनको खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। ये है इस्लाम, ये है इमाम के मानने वाले कि इस मुश्किल के आलम के अंदर वो न सिर्फ खुदगर्ज़ नहीं है बल्कि वो दूसरों की मदद कर रहे हैं। वो आए हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं इन हालात के अंदर, इस पैनिक सिचुएशन के अंदर हम दूसरों को देखें कि हो सकता है किसी के घर का राशन नहीं हो, कोई लोग डेली के खाने पीने वाले हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रही हैं, हर जगह काम कर रही हैं, हमें हर जगह जो है वो खुद अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। और यहीं पर मैं कहूँगा कि जो हालात ख़ास तौर पर पिछले दिनों से पाकिस्तान ज़ायरीन के साथ हुए, बॉर्डर के ऊपर और भी बहुत सारे ज़ायरीन जहाँ मुश्किल, हिंदुस्तान के ज़ायरीन भी जो है वो कुम और मशहद के अंदर जो है वो स्टक हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, जिनमें से ताफ्तान बॉर्डर पर जो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर था वहाँ इतनी मुश्किलात के अंदर, आप मुसलसल वीडियोज़ भी देखते रहे हो, बहरहाल उसमें जो है वो प्रॉब्लम वही सिस्टम की है, जब सिस्टम डिज़ाइन नहीं है दूसरी तरफ तो फिर ये मुश्किलात होंगी। और बहरहाल कहीं ना कहीं तासुब भी जो है वो पाया जाता है कि जिसकी वजह से जो है वो इतने हज़ारों लोग जो हैं वो दूसरी तरफ से मुल्कों के अंदर वारद होते रहे, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ शियान हैदर कर्रार को इस मुश्किल में डाला गया। तो वहाँ पर मैं उन ज़ायरीन को और मोमिनीन को पैगाम दूंगा कि आप परेशान मत हो, शिया हक पर होने की वजह से उसे कीमत देनी पड़ती है। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हक पर थे और खुद हक थे कि जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा उन्हें, और उन्होंने उन मुश्किलात को संभाला। खुद जो है वो इब्ने हदीद जो जिसने शरह नहजुल बलागा लिखी है वो खुद बयान करता है कि 70,000 या 60,000 मेंबर 100 साल तक मौलाए कायनात के वो बुरा भला कहते रहे, खूब क्यों हक पर थे। तो अगर आप हक पर हैं, ये मुश्किलात आपके ऊपर हक की वजह से हैं, आप ज़ाहिर हैं, आप मुश्किलात जो है वो इसलिए आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आप अपने ईमान को मजबूत रखें, इंशाल्लाह आपकी ज़्यारत जो है वो मकबूल है। और वो लोग जो आपकी मदद कर रहे हैं कि इस टाइम आप मुख्तलिफ जगहों पर आप लोगों को पहुँचा दिया गया है, खा काबिल तहसीन है वो उलमाए कराम के जो अपने जगहों को, शहरों को छोड़कर जो है वो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो अंजुमनें, वो तंजीमें जितनी भी हैं कि यहाँ पर जो है वो बग़ैर नामों, बग़ैर उसके हर कोई मिलकर जो है वो काम कर रहा है, और हमें करना भी यही चाहिए। नाम जो है वो हमारे अपने वजूद के लिए है, अगर हम कोई काम अपने नाम के लिए कर रहे हैं तो गोया नफ्स हमारा जो है ना कहीं, और यकीनन जो लोग काम कर रहे हैं वो खलूस के साथ और इखलास के साथ काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो इस मुश्किल हालात में हमें भी चाहिए कि अगर हम घरों में बैठे हुए हैं, अगर हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, तो हम किसी तरीके से अपनी मोरल सपोर्ट दें, कुछ नहीं तो अपने फाइनेंशियल सपोर्ट करें, जो ज़रूरत कितनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनके लिए जो है वो खाने पीने और बाकी इंतज़ाम कर रही हैं। सिंध के अंदर तो मुझे नज़र आया कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन पंजाब के अंदर जो मेरी जैसी उलमा से बात हुई तो वहाँ अफसोस का आलम है कि वहाँ पर लोग नहीं मदद कर रहे हैं। अभी हमारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए हैं, इतने बड़े बड़े जश्न थे वो कैंसिल हो गए हैं, सारी चीज़ें। तो यकीनन वो जो पैसे थे हमारे पास, वो जो हमने खर्च करने थे, उनको इन ज़ायरीन के लिए खर्च करेंगे। मौला के ज़ायर हैं, हम खुद चाहते हैं कि मौला का हरम खुले, हम ज़ियारत पे जाएं। मगर जो ज़ियारत पे आया है हमारे, उसकी तो हिफाजत करें, उसका तो ख्याल रखें। जब हम उसका ख्याल रखेंगे तो यकीनन जल्दी ये हरम खुल जाएंगे और फिर हम सब जो है वो जल्दी जो है वो ज़ियारत पे जो है वो जा पाएंगे। अज़ीज़ाने मोहतरम, ज़िंदगी गुजर जाएगी, ज़िंदगी गुजर रही है, मौत पर हक है, मौत ने आना है किसी न किसी तरीके से। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम एहतियात नहीं करें, हम ख्याल नहीं करें। हमें जो डॉक्टर या स्पेशलिस्ट जो भी हमें कह रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं इन चीज़ों के, हर आदमी व्हाट्सएप पे एक्सपर्ट बना हुआ है, ये दवाई है, ये खाएं, वो पिएं। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हमें उस पर अमल करना है। हत्ता महाराज कराम आयतुल्ला आज़म ने भी जो फतावे दिए हैं कि हमें इन अय्याम के अंदर ख्याल रखना है, हम इन अय्याम के अंदर जो है वो परहेज़ करें इज्तिमा से कि जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं। इसी वजह से उन्होंने बाज़ जगहों पर कहा है कि नमाज़ नहीं पढ़ें, जमात में नमाज जुम्मा जो है वो उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। कि ज़ाहिर है क्योंकि गवर्नमेंट जब कह रही है, एक्सपर्ट जब कह रहे हैं कि जब आप एक जगह जमा होंगे तो मुश्किलात होंगी, बीमारी फैलेगी, मुश्किल होगी, और वहाँ पर जो है वो आयतुल्लाह अज़म ने भी ये कहा है कि हम जो है वो इससे परहेज़ करें। तो हमें बहरहाल इससे परहेज़ करें, हर कोई एक्सपर्ट ना बने, जो डॉक्टर कह रहे हैं हमें उस पर अमल करें, प्रिकॉशन पर अमल करें। यही तालीमात है अहले बैत है, यही तालीमात है कुरान है। सेहत और जान मुहिम है, इसलिए जो है कि इंसान नमाज़ पढ़ रहा हो, शख्स डूब रहा हो, जबकि वाजिब नमाज़ पढ़ रहा हो, और कहा जाता है कि वो नमाज़ को तर्क करे और जो है वो उसकी जान बचाए। जिसने एक इंसान को बचाया उसने गोया इंसानियत को बचाया। तो ये सारे काम इंसानियत को बचाने के लिए आए हैं। और हम ये देखें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो हमें एक ख़ास दर्स और मिलता है कि इमाम जो थे वो बहुत जो है वो बुढ़पार थे। जो जितनी भी मुश्किलात आती थी उनको जो है वो इमाम जो है वो अपने वजूद के अंदर उसको खामोशी से उसको ख़त्म कर देते थे। एक शख्स, मैं पहले भी अर्ज कर चुका उसका वाक़या, कि वो इमाम को बहुत बुरा भला कहता था। अक्सर इमाम के साथ जो साहब थे कहा कि मौला हमें इजाज़त दें, हम इसका काम जो है वो सही करें, इसकी जो है वो इसके साथ ऐसा सलूक करें कि ये ठीक हो। तो इमाम ने कहा नहीं, रहने दो। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था, इमाम अपनी सवारी पर पहुँचे उसके पास, तो वो बड़ा नाराज़ हुआ कि ये आप कहाँ मेरे खेत पर आ गए और मेरी जो है वो फसल ख़राब हो गई। तो इमाम ने पूछा कितनी तुम्हारी फसल होगी पूरी? तो इमाम उसने बताया कि शायद 100 या 200 धरम होगी पूरी फसल जो है वो मेरी इतनी होगी। तो इमाम ने उसको ज़्यादा पैसे जो है वो अता किए, कहा ये लो उससे ज़्यादा पैसे, और ये जो फसल है ये भी तुम्हारी है। और ये कहकर इमाम चले गए। कुछ दिनों बाद देखा साहब ने कि वो शख्स जो इमाम को बुरा भला कहता था वो ख़ुद जो है वो मस्जिद में आया हुआ है और इमाम के साथ इमाम के पीछे जो है वो नमाज़ पढ़ रहा है। तो इमाम ने साहब से कहा कि वो तरीका जिसे तुम इख्तियार करना चाहते थे वो सही था, या वो तरीका जिसे मैंने इख्तियार किया वो सही है? यकीनन अहमा अलैहिस्सलाम इंसानियत की हिदायत के लिए हैं और उनकी तालीमात भी इंसानियत की हिदायत के लिए है। उनकी तालीमात ये नहीं है कि हम आपस में तफरके पैदा करें, हम एक दूसरे को टुकड़ों में तोड़ें, हत्ता मुसलमानों के अंदर तफरके पैदा करें, हत्ता इंसानियत से लोगों को दूर करें। अहमा अलैहिस्सलाम पूरी बशरियत की बका के लिए अल्लाह ने उनको भेजा है। ये मेरा किरदार है जिसे मैं गलत पेश कर कर आपस में नफ़रतें पैदा कर रहा हूँ। यहाँ मोहब्बतों की ज़रूरत है और ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि इस मुश्किल के आलम में हम अपने सारी जो कदूरतें हैं उनको दूर करें और आपस में जमा हों और मिल बैठें और इंसानियत के लिए काम करें। और इन मुश्किल हालात में हम अपने शहरों को, अपने मुल्कों को, अपने लोगों को इस मुश्किल के आलम में बचाएँ। यही मैनेजमेंट क्वालिटीज़ जो हैं वो चेक की जा रही हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं पहले हमेशा यही कहता रहता था कि हमें इमाम तक पहुंचने के लिए अपने जहन को मजबूत करना है, हमें इमाम तक पहुंचने के लिए अपने ब्रेन की एबिलिटी को इन्हेंस करना है। क्या भी हम इस पैनिक में, इस डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर हमारा जहन इतना स्ट्रांग हुआ है कि हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। हम अगर आज अपने आप को मैनेज कर पाए, अपनी सोसाइटी को मैनेज कर पाए, तो यकीन करें कल हम वक्त के इमाम की उस फौज के अंदर हमें शरीक कर लिया जाएगा, क्योंकि यही हमें चेक किया जा रहा है। अगर एक शख्स इन हालात के अंदर ऑल्टरनेटिव्स उसके पास नहीं है, उसके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी नहीं है, तो वो फिर एक ज़ईफ़ आदमी है। खुदावंद मुताल राज़िक है। यकीनन मुश्किल आते हैं, इक्तिसादी बहुत शदीद मुश्किल आते हैं, पूरी दुनिया की अच्छी खासी इकॉनमी जो है वो कोलेप्स हो गई है। कितने जो बिज़नेस थे, जो ख़ासतौर पर ट्रैवलिंग का बिज़नेस था, होटलिंग का बिज़नेस था, बहुत सारे कारोबार जिसको मैं ख़ुद अपनी आँखों से देख कर आया हूँ, वो बिल्कुल तबाह और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन राज़िक कौन है, ये ईमान ज़रूरी है। क्या ये सब कुछ किसने अता किया था पहले? रिस्क देने वाला कौन है? रिस्क को कौन अता कर सकता है? रिस्क किसके अख्तियार में है? ये एक उम्मीद कि खुदा ही राज़िक है। जो पहले दे रहा था वो भी खुदा ही था, और जो अभी हालात में देगा वो भी खुदा है। तो क्या हम अपने खुदा से मुत्तसिल हुए हैं? क्या हम अपने खुदा के साथ मुत्तसिल हो रहे हैं इन अय्याम के अंदर, जो कि एक बहुत फुर्सत है मिली है हमें कि हम आए, किताबों की जो है वो रीडिंग बढ़ाएं, कुरान की तलावत का वक्त मुशख्खस रखें, तर्जुमा पढ़ें। शायद ज़िंदगी में तफसीर पढ़ने का मौका ना मिला हो, आइए तफसीर पढ़ें, अपने लिए टाइम टेबल बनाएं, अपनी फैमिली के आसपास बैठें। मजबूरन बहरहाल बहुत से लोग अब घरों के अंदर बैठना पड़ रहा है, तो यहाँ पर अपने घर वालों के साथ बैठ कर पढ़ें, दुआएँ पढ़ें, जो हमें तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम से इनायत हुई, उलमा इकराम ने जिनको इन अय्याम में पढ़ने को कहा है, जिसमें से जो है वह सईफ़ सज्जादिया, जो ख़ुद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम फरमाई है, दुआ नंबर 7 जो है वह सईफ़ सज्जादिया की मुश्किलात के आलम के अंदर, उसको पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें कि इमाम खुदा से क्या क्या रहे हैं, इमाम खुदा से की बारगाह में क्या मांग रहे हैं। फिर आगे बढ़ें, हम ज़ियारत आशूरा की तिलावत को जारी रखें, हदीस किसा को अपने घर के अंदर, दुआ तवस्सुल को, दुआ नूर को, यानी एक इबादत का एक ऐसा रूटीन अपने घर के अंदर कायम करें, खुदा से मुत्तसिल हों। वजूद के अंदर फिशार पैनिक कुछ नहीं कर सकता। हमारी अपनी जो जहन के अंदर जो दो दो चार चल रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कायनात को इस शोर से, इस तलातुम से खामोश नहीं कर सकता। इंसान की इबादत है, और ख़ुद कुरान इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह बिज़िक्र अल्लाह तत्मईन्नल क़ुलूब, आगाह हो जाओ कि अल्लाह ही का जिक्र है जो तुम्हारे दिलों को मुतमईन इत्मीनान दे सकता है। तो आइए खुदा की बारगाह में चलें और अपने दिलों को इत्मीनान दें, इबादत में एक सजदा उसको करें कि शायद ये फुर्सत हमें अता हुई हो। शायद दुनिया, और शायद इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया बहुत तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, और यकीनन किसी के आने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। आयतुल्लाह शम्सुद्दीन अपनी किताब में बयान फरमाते हैं कि एक शख्स जो है वो हज करने गया या उम्रा पे गया था मक्का, और ज़माने में मक्का के अंदर कोई वबा थी, वो भी उस वबा, उस मरीज़ का मर्ज़ का शिकार हो गया और उसकी हालत ख़राब हो गई। शहर के अंदर से बाहर जिनको भी मर्ज़ था उनको बाहर निकलने नहीं दे रहे थे कि वहीं रहें, और बहरहाल पुराने ज़माने का दस्तूर भी यही था और यही तालीमात इस्लाम भी थी। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही है कि जहाँ वबा और बीमारी हो वहाँ आप शहरों को तर्क ना करो और दूसरे शहरों की तरफ ना जाओ, दूसरे लोग उस तरफ ना आए ताकि वो वबा वहीं ख़त्म हो और दूसरों को ना फैले। तो वो शख्स, उसकी भी हालत ख़राब हो गई, उसका कोई भी शख्स नहीं था उसकी मदद करने वाला। ऐसे में उसने देखा कि एक जवान जो है वो फौजी लिबास में नमूदार हुआ, और उसने कहा कि कुछ खाओगे? और फिर उस शख्स ने मुझे, जवान ने मुझे कुछ खाने को बना कर दिया, मगर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जो है वो एक लुकमा भी जो है वो ले सकता। फिर उसने अपनी जेब से एक जो है वो ऑरेंज निकाला और उसको जो है उसके अंदर निचोड़ा, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से एक लुकमा लिया तो मेरे पूरे वजूद में ऐसा लगा कि जान आ गई। फिर उस जवान ने मुझे कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, ठीक हो गए हो। कहा मैं कैसे जाऊँ, पहरे लगे हुए हैं, कोई शहर से बाहर निकलने नहीं दे रहा। तो कहा लाओ मैं तुम्हें ले कर चलता हूँ, और वो जवान मुझे ले कर निकला, मगर जितने भी वहाँ पर जो है वो निगेबान खड़े हुए थे शहर के बाहर, किसी को हम नज़र नहीं आए, और वो मुझे जवान जो है बाहर ले आया। मैंने उससे पूछा कि तुम हो कौन कि जिसने मेरी जान बचाई और किसी ने हमें देखा नहीं और हम बाहर आ गए। उसने कहा जब तुम अपने शहर पहुँचोगे जो तीसरा शख्स तुमसे मुसाफा करेगा उससे पूछना कि मैं कौन था। सफ़र तौलानी थे उस ज़माने में, कहा मैं अपने शहर पहुँचा और जब मैं पहले दर शख्स से मिला अब मेरे दिल में पूरा इस्तराब था कि कौन तीसरा शख्स मुझे मिलता है। फिर मैं दूसरे से मिला, जब तीसरे से मिला तो वो शहर का वो दाव जबान था, वो जो शहर की निगेबानी करते हैं, शहर के आने अंदर जाने वाले मामलात को देखते हैं। तो मैंने उससे जैसे ही बोला तो मैंने कहा ये शख्स तो एक आम सा शख्स है, इसे क्या पता वो उस शख्स कौन होगा। तो ये मैं सोच रहा था तो उस शख्स ने मुझे खुद बोला कि तुम नहीं जानते कि वो शख्स जो तुम्हें मिला था वो वक्त का इमाम था। मैंने ये सुना तो मैं बहुत हैरत हुआ। वो कहता है, फिर इस शख्स ने कहा कि ये मैं राज तुम्हें नहीं बताता मगर क्योंकि मैं खुद चंद दिन बाद जो है वह दुनिया से चला जाऊंगा इसलिए मैंने तुम्हें यह राज बताया। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त के इमाम से मुत्तसिल हो, वक्त के इमाम से तवसल करें। आज रोज़े जुम्मा है, रोज़े जुम्मा गुजर रहा है, रोज़े जुम्मा गुजर जाएगा, रोज़े मुतवक्का है, ज़हूर है, लेकिन आज हमने अपने वक्त के इमाम को कितना याद किया। यही गिरिया आयमा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का रहा कि कितने लोगों ने उनको याद किया। आज जो है वो रोज़े शहादत है और इमाम जो है वो हमारे दरमियान से चले गए, लेकिन इमाम कैसे गए? इमाम खुद फरमाते हैं कि मैं एक जिंदान से दूसरे जिंदान में भेजा गया, मेरे लिए सख्त थे एक जिंदान और वो हर मुख्तलिफ जिंदान को इमाम ने जो है वो तय किया। कहीं इमाम को मानने वालों ने ऐसी जगह पर रखा मगर वहाँ बराबर में ऐसी आवाज़ें आती थीं, ऐसे नाच गाने और आवाज़ें जो कि इमाम को उस जिंदानों से ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। गोया अगर कोई हराम काम हो रहा हो तो वो हमारे लिए सख्त जिंदान है। हम खुद एक जिंदान के अंदर हैं, अपनी ख्वाहिशात के जिंदान में, अपनी ज़िंदगी की उन तोलानी आरजुओं के जिंदान में हैं जिसने हमें घेर के रखा हुआ है। दुनिया से जिनो मोमिन, दुनिया जो है वो मोमिन के लिए वैसे ही जिंदान है मगर इमाम इन जिंदानों से होते रहे और जब इमाम इन जिंदान में पहली दफ़ा भेजे गए तो इमाम से इस रवायात को बयान किया है कि इमाम फरमाते हैं कि परवरदिगार तेरा शुक्रगुजार हूँ तूने मुझे मौका दिया मैं तेरी बारगाह में खलवत में तुझे इबादत कर सकूँ। मगर एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते एक वक्त ऐसा आया जब उस आखिरी उस लाइन के जिंदान में वहाँ पहुँचे गए जिसके लिए मशहूर था कि जो इसके इस जिंदान में इस गहरे काले कुएं जैसे जिंदान में जो जाता था वो वापस नहीं आता था। और जब इमाम को वहाँ भेजा गया वहाँ एक इमाम की अजीब दुआ है, अजीब कलामात है। ये लाइन खुद को जहन्नम वासिल हो गया मगर इसकी बीवी और इसकी औलाद अहले बैत के मानने वालों में शुमार हुए। कैसे हुए? क्योंकि इजाज़त तो नहीं थी किसी को उस जिंदान के करीब जाने की। ये बच्चे बहानों से सहन और हयात में पहुंचते थे और वो खुद कहते हैं कि हमने सुना कि हमें जिंदान से आवाज़ आती थी ऐ परवरदिगार कि जिसके कब्ज़े में सब कुछ है, जो ज़मीन से पानी और खाक के दरमियान से पौधे को निकाल सकता है, जो माँ के रहम से औलाद को दे सकता है ऐ परवरदिगार कि जो बदनों व अराजा से रूह को निकालता है, परवरदिगार मुझे जिंदान से आज़ाद कर, इस सख्त हालात से मुझे बाहर निकाल। परवरदिगार परवरदिगार ने यही हुआ कि वक्त गुजर गया और कुछ मानने वाले आए जो इमाम के चाहने वाले थे। वो चाहते थे कि हम किस तरीके से इमाम को देखें। तो बयान होता है कि जब उन्हें कहा कि सुराख है, सुराख से देखो, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ नज़र नहीं आता। कहा क्या है? कहा एक कपड़ा सा रखा हुआ है। कहा यही इमाम है। इमाम इतने ज़यीफ़ हो चुके थे कि इमाम के बदन पर सिर्फ़ और सिर्फ वही जंजीरें थीं, वही तौक बंधे हुए थे। हाँ अज़ादारान मोहतरम, इमाम को जहर दिया गया और इमाम जो है वो उसी जिंदान में जो है वो शहीद हो गए। बाएजाज़े इमामत मौजज़ा होते हुए खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ़ लाए यकीनन उन्होंने ही सारे कामों को अंजाम दिया। इमाम के उस जनाजे को जो है वो बाहर रख दिया गया और 3 दिन तक कहते हैं कि बगदाद के पुल पर इमाम का जनाजा पड़ा रहा और फिर इमाम को जो है वो मजदूरों ने जो है वो वहीं पर दफना दिया कि जहाँ आज इमाम का रोज़ा है। ला यौम यौम ख़्वाब अब्दुल्ला, मौला 3 दिन आपका जनाजा पड़ा रहा मगर एक ऐसे चीज़ में था कि आपका जनाजा अंदर था, यकीनन आपके बदन पर सख्त निशान थे, यकीनन आप जंजीरों में थे मगर आपके जद का जनाजा 3 दिन तक बेघोर व कफन करबला की दश्त में खाक में आलूदा और हवाएं उसके ऊपर से उड़ती रहीं। परवरदिगार हमारी इस कलील से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके नाशरों उनके मददगारों में शुमार फरमा, जो भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो भी मरीज़ हैं ख़ास तौर पर इस वबा के ज़रिए से मरीज़ हैं परवरदिगार, उन सबको शिफाए कामिल और आजला अता फरमा, इस मुसीबत को पूरे आलम से बाबुल अवाइज इमाम मूसा काज़िम के सदक़े में जल्द से जल्द दूर फरमा, जितने भी मुल्क इस मुश्किल के आलम हैं उनकी मुश्किल को बाबुल अवाइज इमाम मूसा काज़िम के सदक़े में दूर फरमा, जितने भी कैदी हैं असीर हैं बेगुनाह असीर हैं शेख जगज़की हैं और असीरान जो हैं वो जिंदानों के अंदर हैं, परवरदिगार उनको इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की असीरी का वास्ता उन्हें जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा, जो पे औलाद हैं औलाद साले अता फरमा, जो बरसर रोज़गार उनके रस में कुशादगी अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उसके हलाल अता फरमा, इन मुश्किल हालात में परवरदिगार हमें अपनी बारगाह में मुत्तसिल होने की तौफीक अता फरमा, हमें बेहतर तरीके से इन अय्याम में ज़िंदा रहने की तौफीक अता फरमा, जो भी मुश्किलात हैं जो जहाँ जहाँ इस वजह से मुश्किलात के अंदर है, कोई बॉर्डर में है, कोई कहीं किसी मुल्क में फंसा हुआ है, बहुत सारे लोग मुश्किलात के अंदर हैं, हर चीज़ ज़ाहिर है कैंसिल हो गई हैं, फ़्लाइटें जो हैं वो नहीं हैं, मुश्किलात में परवरदिगार तू उनका मददगार है, तू ही हर किसी को निजात देने वाला है, परवरदिगार तुझे वास्ता बाबुल अवाइज इमाम मूसा काज़िम का, उन सब की मुश्किलात और हाजात को जल्द से जल्द कबूल फरमा, इसके मुश्किल वक्त में हमें साबित कदम और दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा अरज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ातहु फ़िल आख़िरा। आख़िर में एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा। तमाम मोमिनीन मोमिनात मरहूमिन तमाम उलमा तमाम शहदा अपने मरहूमिन को मेरे मरहूमिन को और ख़ास तौर पर उस्ताद सैयद सिफ़त जाफ़र और शेख कासिम सुलेमानी के रूपों पर
عمری زدیم از دل صدا با بلحوامج را خواندیم بعد از ربنا با بلحوامج را روزی ما کرده خدا با بلحوامج را از ما نگیرد کاش یا با بلحوامج را هر کس صدایش کرد بیچاره نخواهد شد کارش به یک مو هم رسد پاره نخواهد شد
یادش به خیران روزا که مادر خانم گهگاه میزد پرچم ایران سر در خانم پر میشد از همسایا دور و بر خانه یک سفره نظری قدر وسع شوهر خانه
مادر پدرهامان همین که کم می آوردند یک سفره موسی بن جعفر نظر می کردند
یک سفره موسی بن جعفر نظم می کرد
عصر سه‌شنبه خانه ما روبرا می شد یک سفره می افتاد و درد ما دوام می شد
با عشق وقتی چشم مادر آشنا شد، آجیل‌های سفره هم مشکل گشا می شد. آنچه همیشه طالبش چندین برابر بود، نان و پنیر سفره موسوی
آنچه همیشه طالبش چندین برابر بود، نان و پنیر سفره موسی بن جعفر بود. گاهی میان روزه ما شور می آمد، پیر زنی از راه خیلی دور می آمد، با دختری از هر دو چشمش کور می آمد، بهر شفای کودک منظور می آمد. یک بار در بین دعا ما بین
آمینم برخواست از جا، گفت دارم خوب میبینم.
دارم خوب